ये आकाशवाणी है। अब आपका करिश्मा राय से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांव में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण के जरिए घरों के अधिकार का एक रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 13 फरवरी तक पेश किया जाएगा और दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। गृह मंत्री ने राज्य में जल्द से जल्द कानूनों के 100% क्रियान्वयन पर भी बल दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। 1,000 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की शिखा राय और नीरज बसोया ने नामांकन दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, राखी बिड़लान और वंदना कुमारी ने भी नामांकन भरे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर पार्टी दिल्ली में सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय राजधानी में प्रत्येक गरीब महिला को प्रतिमाह 2,500 रूपए और रसोई गैस सिलेंडर 500 में दिए जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में पहला संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन का भी वचन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रति महीने मिलने वाली 2,000 रूपए की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 2,500 रूपए कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में 2027 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यातायात और भीड़ प्रबंधन, आवास सुविधाओं, क्षेत्र में नदियों की सफाई और पुनः उद्धार के अलावा बुनियादी ढांचे के बारे में भी चर्चा की गई। श्री फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को नासिक त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र को एक धार्मिक गलियारे और नासिक को एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने एक सम्मेलन केंद्र और एक महाकुंभ की स्थापना का सुझाव दिया जहाँ भक्त भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का अनुभव कर सकें। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का दौरा किया। अपने संबोधन में श्री सिंह ने एनसीसी कैडेटों की कड़ी मेहनत की सराहना की। रक्षा सचिव ने कहा कि कैडेटों ने शानदार प्रदर्शन किया और यह राष्ट्र की रचनात्मक और युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और अपने सभी मैचों में अजेय रही हैं। भारतीय पुरुष टीम ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में श्रीलंका पर 140 से शानदार जीत हासिल की। टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले टर्न में अकेले 58 अंक बनाए। श्रीलंका के प्रयासों के बावजूद वे भारत के आक्रामक खेल का मुकाबला नहीं कर सके। तीसरे टर्न में भारतीय टीम ने जोरदार आक्रमण किया जो चौथे टर्न में भी जारी रहा। रामजी कश्यप को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया जबकि वी सुब्रमणि को मैच का सर्वश्रेष्ठ हमलावर पुरस्कार मिला। श्रीलंकाई टीम से ससिनाडू को मैच का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।